नमस्कार भारत, 30 अप्रैल सोमवार, मैं हूं आदर्श राठौर। जम्मू कश्मीर में मंत्रिमंडल में फेरबदल से पहले बड़ी हलचल, उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने दिया इस्तीफा। मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के दौरान अभ्यर्थियों के सीने पर लिखा गया SC/ST।
मामला गंभीर है, इसीलिए इसको संज्ञान में लिया है और जो है जांच के आदेश दिए। जांच के बाद जो भी निष्कर्ष आएगा, जो भी लोग दोषी पाए जाते हैं।
गुजरात विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी से जानेंगे, प्रधानमंत्री मोदी को ब्राह्मण और श्री कृष्ण को OBC उन्होंने क्यों बताया।
ब्राह्मण कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी, गीता में एक श्लोक आता है, कर्म के हिसाब से वर्ण था, वर्ण के हिसाब से कर्म नहीं था।
सुनेंगे वसतुल्लाह खान की डायरी।
अगर उत्तरी कोरिया में मुसलमान और दक्षिणी कोरिया में हिंदू बहुमत होता तो आज 2018 की दुनिया में वो एक दूसरे के बारे में किस तरह सोच रहे होते।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार नवीन नेगी से। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार में आज होने जा रहे फेरबदल से पहले राज्य के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता निर्मल सिंह ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह राज्य विधानसभा के अध्यक्ष कविंद्र गुप्ता नए उप मुख्यमंत्री होंगे। मध्य प्रदेश में कांस्टेबलों की भर्ती में चयनित आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के सीने पर उनके वर्ग अर्थात SC/ST दर्ज किए जाने का मामला सामने आया है। धार जिले में पिछले दिनों कांस्टेबलों की भर्ती का अभियान चलाया गया, जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के सीने पर ही उनका वर्ग दर्ज कर दिया गया। ब्रिटेन की गृह सचिव एम्बर रूड ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले कई हफ्तों से ब्रिटेन की सरकार पर कैरिबियाई प्रवासियों के साथ दुर्व्यवहार की आलोचना हो रही थी। हालांकि रूड ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि उन्हें निर्वासित अप्रवासियों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन लीक हुए कुछ डेटा में यह पाया गया है कि रूड ने खुद कुछ अधिकारियों के सामने अप्रवासियों के निर्वासन आंकड़ों को बढ़ाने का लक्ष्य रखा था। ब्रिटेन में पिछले कई दशकों से रह रहे कैरिबियाई अप्रवासियों को निर्वासन का डर सता रहा है, क्योंकि उनके पास ब्रिटेन पहुंचने के वैध दस्तावेज नहीं हैं। अमरीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा है कि अमरीका अभी भी इस बात पर पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुआ है कि उत्तर कोरिया अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करने जा रहा है। CBS चैनल के कार्यक्रम फेस द नेशन में बोल्टन ने कहा कि भले ही उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने इस संबंध में सकारात्मक संकेत दिए हैं, लेकिन उन्हें परमाणु निरस्त्रीकरण का अपना वादा पूरा करना होगा। जॉन बोल्टन ने कहा,
If he has made a strategic determination that North Korea would be better off without nuclear weapons, then I think we've got.
अगर उन्होंने एक रणनीतिक प्रतिबद्धता के साथ यह बात कही है कि उत्तर कोरिया अब परमाणु कार्यक्रम बंद कर देगा, तो उनके साथ बातचीत करने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि आज जो स्थिति बनी है वह राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से लगातार बनाए गए दबाव का ही नतीजा है। अमरीकी प्रशासन ने उत्तर कोरिया पर आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य दबाव बनाए रखा और अब यह उत्तर कोरिया पर निर्भर करता है कि वह अपने वादे को किस तरह पूरा करता है। ये थे अमरीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। आर्मेनिया के सत्ताधारी दल का कहना है कि वे प्रधानमंत्री चुनावों के लिए विपक्षी नेता निकोल पाशियान के सामने अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। निकोल पिछले दो हफ्तों से आर्मेनिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन कर रहे हैं। निकोल ने पिछले दिनों एक रैली में कहा था कि वे प्रधानमंत्री का पद संभालने के इच्छुक हैं। इसके साथ ही निकोल ने एक बार फिर कहा कि अगर संसद उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चुनती है तो वे रूस के साथ दोस्ताना संबंध बरकरार रखेंगे। रविवार को आर्मेनिया की राजधानी यरेवन में एक मार्च में शामिल होते हुए निकोल ने कहा, हमारा यह राजनीतिक संघर्ष धीरे धीरे एक उत्सव में बदलता जा रहा है। अब यह हम सब की जिम्मेदारी है कि यह उत्सव महज कोई छोटी सी घटना बनकर ना रह जाए। यह प्रेम, सहिष्णुता और कानून की जीत के रूप में दर्ज होना चाहिए। ये थे आर्मेनिया में विपक्ष के नेता निकोल पाशियान के शब्द। सीरियाई सेना के दो अड्डों पर रॉकेट से हमला होने की खबरें मिल रही हैं। ये हमले हमा और अलेप्पो में स्थित सीरियाई सेना के बेस पर हुए हैं। सीरियाई सेना के एक प्रवक्ता ने BBC को बताया कि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि इन हमलों के पीछे किसका हाथ है। वहीं सीरिया की सरकारी मीडिया ने इशारा किया है कि यह हमला देश के दुश्मनों की आक्रामक कार्रवाई का परिणाम है। BBC समाचार।
B बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में स्वागत है आपका। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। आज जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल होने जा रहा है। बीजेपी ने पहले ही महबूबा मुफ्ती सरकार में शामिल अपने मंत्रियों को इस्तीफा देने के लिए कह दिया था, मगर उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह इससे अछूते रहे थे। अब खबर आई है कि निर्मल सिंह की जगह विधानसभा अध्यक्ष कविंदर गुप्ता नए डिप्टी सीएम होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए श्रीनगर में मौजूद हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। माजिद, आपसे जानना चाहेंगे क्या खबर आई है।
बिल्कुल आदर्श जी, देखिए ये कल दिन भर जो डेवलपमेंट हुई है बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी के सभी मंत्रियों से इस्तीफा लिया गया था और डॉक्टर निर्मल सिंह से इस्तीफा नहीं लिया गया था तो कल उनको दिल्ली बुलाया गया था, जो पार्टी के लोगों से हमारी बात हुई और वहाँ बहुत देर रात तक बैठक चली वहाँ पे, तो अल्टीमेटली उनसे जो है इस्तीफा लिया गया और उनकी बैठक राम माधव जो जे एंड के अफेयर्स के इंचार्ज भी है इनके पार्टी के और अमित शाह के साथ उनकी बैठक हुई और देर रात उनसे उनको इस्तीफा देना पड़ा। और अब जो अभी तक पता चल रहा है पार्टी के सोर्सेज से और पार्टी के लोगों से कि उनकी जगह जो असेंबली के स्पीकर है कविंदर गुप्ता, तो उनको आज जम्मू में जो ओथ सेरेमनी का प्रोसेस हो रहा है तो उसमें उनको जो है डिप्टी सीएम के पद पर बिठाया जाएगा और साथ ही बीजेपी के और भी 6 नए चेहरों को जो है इसमें अब कैबिनेट में इंडिक्ट किया जाएगा।
जी माजिद, क्या ये पता चल पाया है कि पहले निर्मल सिंह से इस्तीफा नहीं लिया गया था, लेकिन अचानक ये इस तरह से क्यों मतलब उनको उनकी जगह नए डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं?
देखिए दरअसल बीजेपी जो है पिछले 3 साल जो बीजेपी के रहे जम्मू में और जो उनकी जमीनी सूरत हाल है जम्मू की तो बहुत अच्छी नहीं है परफॉर्मेंस के लिहाज से पार्टी में, पार्टी के अंदर भी ये शिकायतें होती रही हमेशा कि जो मंत्रिमंडल है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है अच्छे से। और उसके बाद जो कठुआ का मामला हो गया तो उसने मामले को और भी गंभीर किया कि जब लाल सिंह और गंगाराम जो इनके 2 सीनियर मंत्री थे इसमें पार्टी में, तो उनसे फिर फोर्सड रिजिग्नेशन लिया गया और उसके बाद जो है पार्टी को जाहिर सी बात है कि ये गठबंधन सरकार है, पीडीपी को कश्मीर की चिंता रहती है और बीजेपी को जम्मू की फिक्र, कंस्टिट्यूएंसी की फिक्र रहती है और उसके बाद एक पूरा इसको रिशेप करने का प्रयास शुरू किया गया और जिसकी वजह से ये सब चीजें जो है इनको करनी पड़ रही हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया माजिद।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
अब बात मध्य प्रदेश की, जहां पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के सीने पर SC/ST लिख दिया गया। बताया जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि उनकी पहचान आसानी से हो जाए। जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो जिम्मेदारों ने बताया कि इस तरह से लिखने का कोई आदेश नहीं दिया गया था। अब इस मामले की जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। पेश है शुरह नियाजी की रिपोर्ट।
प्रदेश के धार जिले में कुछ दिन पहले आरक्षकों की भर्ती का अभियान चलाया गया और अब उनका स्वास्थ्य परीक्षण चल रहा है। स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान सामान्य और आरक्षित वर्ग के लिए लंबाई अलग अलग तय है। इसी के चलते स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान जिला अस्पताल में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के सीने में उनकी जाति लिख दी गई। इन उम्मीदवारों के सीने में SC और ST लिखी फोटो जब सामने आई तो प्रशासन हरकत में आया। CMO डॉक्टर RC पनिका ने सफाई देते हुए कहा उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि चुने हुए आरक्षकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने इस मामले को गंभीर मानते हुए दोषियों पर कार्यवाही का भरोसा दिलाया है।
हाँ, मामला तो अच्छा ठीक नहीं है, ये लिखना नहीं चाहिए, गंभीर मामला है, इसको मैं लिखवाता
हूँ। वहीं जिले के पुलिस अधीक्षक को भी जब इस मामले की जानकारी लगी तो उन्होंने भी इस मामले की जाँच कराने की बात कही है। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने कहा
ये बहुत ही बड़ी गंभीरता से इसको लिया है मैंने, ऐसा होना नहीं चाहिए था। मैंने इसमें एक जांच दल बनाया है, उनको कहा है कि इसकी जांच करके पूरी रिपोर्ट मेरे को दें ताकि जो भी इसमें दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। मामला गंभीर है इसीलिए इसको संज्ञान में लिया है और जो है जाँच के आदेश दिए। जाँच के बाद जो भी निष्कर्ष आएगा, जो भी लोग दोषी पाए जाते हैं उनसे
प्रदेश में पुलिस विभाग में पदों के लिए लिखित परीक्षा कराई गई थी, उसमें कामयाब हुए उम्मीदवारों का मेडिकल चल रहा था, जिसके लिए धार जिले में चुने गए अभ्यर्थियों का पहले मेडिकल कराया जा रहा था। इस तरह के हालात का सामना करने के बाद परीक्षा में सफल रहे उम्मीदवार इसके बारे में बोलने से बच रहे हैं। उन्हें मालूम है कि अगर उन्होंने कुछ बोला तो नौकरी उनके हाथ से चली जाएगी। शुरहनियाजी, बीबीसी न्यूज, भोपाल।
गुजरात विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने शनिवार को गांधीनगर में आयोजित विशाल ब्राह्मण कारोबार सम्मेलन में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राह्मण हैं। इसके साथ ही उन्होंने बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर को भी ब्राह्मण बताया था। त्रिवेदी का कहना है कि भगवान कृष्ण ओबीसी थे और उन्हें ब्राह्मण जाति के ऋषि ने भगवान बनाया था। आखिर पीएम मोदी और बीआर आम्बेडकर को ब्राह्मण और श्री कृष्ण को ओबीसी घोषित करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? बीबीसी संवाददाता रजनीश कुमार ने यही सवाल किया राजेंद्र त्रिवेदी से।
ब्राह्मण कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। गीता में एक श्लोक आता है कि कर्म के हिसाब से वर्ण था, वर्ण के हिसाब से कर्म नहीं था, इसलिए जो बुद्धिशाली थे वो ब्राह्मण। मेरा कहने का मतलब ऐसा है, जो भी कोई ज्ञानी है तो ये विशेषण है, एडजेक्टिव है। ब्राह्मण इज नॉट अ कास्ट। ये बुद्धिजीवी जितने भी है, बहुत बुद्धिशाली जो भी है, उनको हम ब्राह्मण कह सकते हैं। दैट इज व्हाट द आइडिया इज।
तो मतलब ज्ञान के आधार पर आप कह रहे हैं कि मोदी जी ब्राह्मण है, इस आधार पे?
मोदी जी के पीछे क्यों पड़े?
अच्छा ठीक है,
मेरा जो संदर्भ पूछा ना आपने, जो पूरा संदर्भ है वो ये है, जितने भी होशियार आदमी है, जितने भी ज्ञानी आदमी है, वो सभी ब्राह्मण है। ये दैट इज व्हाट द तर्क इज। जी बोलिए।
एक आपने बात कही कि कृष्ण को ब्राह्मण ने भगवान बनाया और वो ओबीसी थे।
ओबीसी वो ठीक है, आप उसको आज की सिस्टम से देखे जाएंगे तो भरवाड़ लोग, जैसे गाय चराने वाले, तो अगर आप उसको काम की दृष्टि से देखेंगे, क्षत्रिय को भगवान बनाया, ब्राह्मण ने कभी होदा नहीं लिया। मैं इनकार थोड़ी कर रहा हूँ, मैंने नहीं बोला, मैंने बोला है गीता में ये बात है कि कर्म के हिसाब से वर्ण, वर्ण के हिसाब से कर्म नहीं।
तो आप खुद को ब्राह्मण मानते हैं?
हाँ, जो भी ज्ञानी लोग हैं उन सभी को मैं ब्राह्मण कह सकता हूँ।
ये थे गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश में रविवार को हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के परिणाम आए। सरकार ने परीक्षा से पहले और उसके बाद भी जिस तरह से नकल विहीन परीक्षा कराने का दावा किया, उसके हिसाब से माना जा रहा था कि परिणाम काफी कम आएंगे, लेकिन दोनों परीक्षाओं का औसत प्रतिशत 75 के करीब है, जो कम नहीं कहा जा सकता। हालांकि बताया इसे अभी भी नकल विहीन ही जा रहा है और परिणामों में उसके असर की भी बात की जा रही है, लेकिन दोनों ही दावों पर उंगलियां भी उठ रही हैं। सुनिए लखनऊ से समीरात्मज मिश्र की ये रिपोर्ट।
इस साल की बोर्ड परीक्षाओं के पहले नकल विहीन परीक्षा कराने संबंधी राज्य सरकार की कोशिशों को देखते हुए लोगों को 1992 की कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार याद आ गई, जब हाईस्कूल की परीक्षा में करीब 86% बच्चे फेल हो गए थे और इंटरमीडिएट में भी महज 30% बच्चे पास हो सके थे। लेकिन इस बार नकल विहीन परीक्षा के दावे के बावजूद हाईस्कूल का रिजल्ट 75% और इंटरमीडिएट का रिजल्ट 72% से ज़्यादा रहा। रिजल्ट निकलने के तुरंत बाद शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इसे सरकार की उपलब्धि बताया, तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भी नकल विहीन परीक्षा का श्रेय लेने से नहीं चूके।
प्रदेश के अंदर नकल विहीन परीक्षा संपन्न हुई और नकल विहीन परीक्षा संपन्न होने के साथ ही जो परिणाम सामने आए हैं, मुझे प्रसन्नता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद ने एक समय सीमा के अंदर नकल विहीन परीक्षा संपन्न करने और फिर परीक्षा परिणाम इतनी जल्दी सामने लाने में सफल रहा है।
लेकिन जानकारों का कहना है कि नकल विहीन परीक्षा और इतनी बड़ी संख्या में छात्रों का पास होना कुछ विरोधाभासी सा लगता है। हालांकि परीक्षा से पहले ही करीब 11 लाख छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी थी। इसके पीछे भी परीक्षा में सख्ती का डर बताया जा रहा है। शिक्षक विधायक ओम प्रकाश शर्मा कहते हैं कि सख्ती से परिणाम में कमी जरूर आई है, लेकिन नकल विहीन परीक्षा पर वो भी संदेह जताते हैं।
कुछ लोग तो परीक्षा के पास भी नहीं आते थे, तब उनका कापियां लिखी जाती थी और छोड़ दी जाती थी, ठेकेदारी चलती थी। कुछ जगहों पर वो खास ठेकेदारियां चली हैं, अब भी चली हैं। मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि उसमें बहुत प्रभावशाली वर्तमान राजनीतिक दल के ही लोग हैं जिनके यहाँ ये सब पाया गया, लेकिन वो बस चुनिंदा है ना, इसलिए उनका प्रभाव नहीं दिखाई देता। वो मास स्केल वाला जो था वो बहुत कम हो गया।
ओम प्रकाश शर्मा ये भी कहते हैं कि लाखों छात्र पिछले सालों में भी बोर्ड परीक्षा छोड़ते रहे हैं। हाँ, इस साल उनकी संख्या जरूर कुछ ज्यादा थी। बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। गोरखपुर के एक व्यवसायी गौरव दुबे इस परीक्षा परिणाम और राजनीति के बीच संबंध की एक दिलचस्प आशंका जताते हैं।
सरकार ईमानदारी से नकल रोक के परीक्षा करा दे तो परिणाम 45 से 40 से ऊपर नहीं जाएगा। परीक्षाओं के दौरान ये गोरखपुर और फूलपुर का चुनाव हारे हैं बाई इलेक्शन कौन हो। हमें लगता है कि सरकार को ये डर होगी अगर कम बच्चे पास हुए तो कहीं गोरखपुर और फूलपुर नूरपुर और कैराना में भी ना दोहराया जाए, इस वजह से भी बच्चों को पास कर लिया गया हो।
दरअसल 1992 में इतनी सख्त परीक्षा कराने के बाद 1993 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के तमाम कारणों में से एक ये भी था और खुद शिक्षा मंत्री रहे राजनाथ सिंह भी चुनाव हार गए थे। इसलिए जानकारों के मुताबिक गौरव दुबे की बातों को यूं ही खारिज भी नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि क्या जो भी परीक्षार्थी इस बार पास हुए हैं वो पिछले सालों की तुलना में इसके असली हकदार थे या फिर दाल में कुछ काला अब भी है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और अब बात कर्नाटक की। यहाँ विधानसभा चुनाव के लिए चल रहे प्रचार के दौरान बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही वादा कर रही हैं कि वो लोकायुक्त संस्था को और मजबूत करेंगी, मगर राज्य के पूर्व लोकायुक्त संतोष हेगड़े का कहना है कि दोनों ही पार्टियां लोकायुक्त को मजबूत करने के नाम पर मजाक कर रही हैं। इसी पर सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
भ्रष्टाचार इस चुनाव में मुद्दा तो है ही, मगर कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ इतना बड़ा अभियान चलाया है कि बीजेपी को अपने एक प्रमुख नेता को नसीहत देनी पड़ी। नसीहत ये थी कि वो गाली जनार्दन रेड्डी को चुनाव प्रचार अभियान में इस्तेमाल ना करें। गाली जनार्दन रेड्डी वही हैं जो 16,500 करोड़ रुपयों का गैर कानूनी खनन घोटाले में प्रमुख आरोपी हैं। जनार्दन रेड्डी अपने मुंह बोले भाई बी श्री रामलू के लिए मोलकालमरु क्षेत्र में अभियान चला रहे हैं। इन हालात में कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि वो सत्ता में आने के बाद लोकायुक्त संस्था को और मजबूत बनाएगी ताकि भ्रष्टाचार को अंकुश लगा पाए। पूर्व लोकायुक्त जस्टिस संतोष हेगड़े ने BBC को बताया,
2013 अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर सिद्धरामैया व्हिच वाज इन द ऑपोजिशन देन,
2013 में कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद लोकायुक्त से भ्रष्टाचार के मामलों में जांच करने का अधिकार वापस ले लिया और एंटी करप्शन ब्यूरो बना दिया, और अभी कह रहे हैं कि वो फिर से लोकायुक्ता को मजबूत करेंगे। ये मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। बीजेपी ने तो हमारी 2011 के गैर कानूनी खनन घोटाले की रिपोर्ट पर कुछ नहीं किया था, हालांकि उनके पास भी समय था। इसका मतलब यही है कि भ्रष्टाचार सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है और कोई भी पार्टी लोकायुक्त संस्था को ज्यादा अधिकार नहीं देना चाहती है। ये थे पूर्व लोकायुक्त जस्टिस संतोष हेगड़े के शब्द। जस्टिस संतोष हेगड़े को इसलिए इतना गुस्सा आता है क्योंकि उनके रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे कदम उठाए थे। कानून विषयों के जानकार का मानना है कि अगले 30 साल तक फिर से घोटाला नहीं होगा। ये बात तो स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में लोगों को दिलचस्पी होती है, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि मतदाता चुनावी मैदान में उस उम्मीदवार को वोट देते हैं जो उनका काम करवा दें, चाहे वो कितना भी भ्रष्ट हो। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
और अब समय है अखबारों की समीक्षा का। नवीन नेगी काफी देर से अखबारों को उलट पलट रहे हैं, भाई क्या कहते हैं आज के अखबार?
आदर्श, आज के अखबारों में एक खबर जो सभी जगह छाई हुई है वो है कल रामलीला मैदान में जो राहुल गांधी ने युवा आक्रोश रैली की थी, उसकी तस्वीरें और उसकी खबरें सभी जगह छाई हुई हैं। लेकिन दैनिक भास्कर ने कुछ नए आंकड़े इस रैली से जुड़े हुए हमारे सामने रखे हैं और उनकी जो शीर्षक है वो भी बड़ा आकर्षक है। उन्होंने लिखा है कि 47 साल के युवा राहुल के जोश से उठने की कोशिश में बुजुर्ग कांग्रेस। और अखबार लिखता है कि मंच पर 20 प्रमुख नेताओं की औसत उम्र 70 साल है, सबसे उम्र दराज जो नेता वो मोतीलाल वोरा 79 साल के थे जो मंच पर मौजूद थे
जी।
और कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने पहली बार ऐसी कोई महारैली की थी। अन्य खबरों की तरफ मुड़े तो जम्मू कश्मीर में उप मुख्यमंत्री का जो इस्तीफा हुआ है वो भी सभी अखबारों में खबरें छाई हुई हैं। और दैनिक भास्कर लिखता है कि निर्मल सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है, कविंद्र गुप्ता जो है नए उप मुख्यमंत्री होंगे। और भास्कर ने तो यहाँ तक लिखा है कि आज कविंद्र गुप्ता अपने पद की शपथ भी ले सकते हैं
जी।
इसके अलावा एक और खबर जो इंडियन एक्सप्रेस में छपी है उसके अनुसार देश के सभी गांव अब बिजली युक्त हो चुके हैं, यानी सभी गाँव में देश के देश के सभी गांवों में बिजली पहुंच चुकी है और मणिपुर के लीसांग गांव में शनिवार शाम को जब बिजली पहुंची तो उसके साथ ही देश के सभी गांव में बिजली पहुंच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद रविवार को ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि लीसांग गाँव में बिजली पहुँचने के साथ ही देश का हर गाँव अब बिजली युक्त हो गया है। एनडीए की जब सरकार बनी थी तो उन्होंने दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत की थी और उसमें 76,000 करोड़ रुपए उन्होंने गाँव में बिजली पहुंचाने के लिए उन्होंने जारी किए थे
जी।
अन्य खबरों की तरफ पहुंचे तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक बड़ा वादा किया था कि वो दिल्ली को मुफ्त वाईफाई सुविधा देंगे दिल्ली वासियों को, लेकिन अब लगता है कि दिल्ली सरकार ये वादा पूरा नहीं कर पाएगी। हिंदुस्तान टाइम्स ने एक खबर छापी है, वह लिखता है कि दिल्ली सरकार ये वादा इसलिए पूरा नहीं कर पाएगी क्योंकि कोई भी सरकारी विभाग इस योजना को कार्यरत करने के लिए सामने ही नहीं आ रहा है
जी।
अखबार ने एक वरिष्ठ पीडब्ल्यूडी अधिकारी के हवाले से अखबार ने लिखा है कि इस योजना के ऑफिसर इंचार्ज ने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर इंचार्ज को लिखा है कि विभाग के पास फ्री वाईफाई योजना को पूरा करने के लिए कोई विशेषज्ञ ही नहीं है
जी। देवीन बहुत बहुत शुक्रिया।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब पाकिस्तान से वसतुल्ला खान की डायरी जिसका आपको रहता है इंतजार।
3 दिन से मैं सोशल मीडिया पे पढ़ पढ़ के ऊब गया हूँ कि अगर उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के नेता दूसरी जंग के नतीजे में होने वाले विभाजन के बाद 3 वर्ष चलने वाले युद्ध और इसके बाद के 65 वर्ष में सैकड़ों हजारों टन धमकियों, लाखों टन गालियों और सीमा के एक एक इंच को सैनिकों से भर देने के बाद इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि हाथ तो मिलाना ही पड़ता है, तो फिर इंडिया पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सकते। मगर मेरा मानना है कि कोरिया का उदाहरण इंडिया पाकिस्तान पे फिट नहीं बैठता, लिहाजा खामखा आस उम्मीद की दलदल में गोते खाने से खुद को ना थकाएं। कारण ये है कि इंडिया पाकिस्तान दो अलग अलग देश हैं, जबकि कोरिया के दोनों हिस्से ऐसे ही हैं जैसे पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी यानी कोल्ड वार की निशानियाँ। दोनों शायद एक दिन जर्मनी की तरह जुड़ भी जाएँ क्योंकि वो जुड़ना ही चाहते हैं। दोनों कोरियाओं का राष्ट्र चलाने का नज़रिया भले अलग अलग हो मगर जबान, नस्ल, रंग, खान पान और इतिहास एक ही है। लेकिन सोचिए अगर उत्तरी कोरिया में मुसलमान और दक्षिणी कोरिया में हिंदू बहुमत होता तो आज 2018 की दुनिया में 72 वर्ष पुराने विभाजन को लेके वो एक दूसरे के बारे में किस तरह सोच रहे होते। कोरियंस की नाक ऐसी है कि वो एक दूसरे से आसानी से मिला सकते हैं, हमारी नाकें इतनी लंबी हैं कि कट तो सकती हैं, मिल नहीं सकती, टूट सकती हैं पर नीचे नहीं हो सकती। तो क्या इतनी लंबी नाकें रखने के बावजूद हम दो नॉर्मल देशों की तरह नहीं रह सकते? बिल्कुल रह सकते हैं, मगर क्यों रहें? उसके बाद जीवन में बोरियत के सिवा बचेगा क्या? बाकी दुनिया और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा? वैसे भी हम और आप गालिब के मानने वाले हैं जिन्होंने कोरियंस के लिए नहीं हमारे बारे में ही फरमाया है कि छेड़ खूबा से चली जाए असद, गर नहीं वसल अदावत ही सही। हमारे पास कश्मीर है, परमाणु हथियार हैं, आरएसएस का नज़रिया है, हाफिज सईद है, रॉ है, आईएसआई है, अफ़गानिस्तान है, वागा अटारी की जिन्नाती परेड है, एक दूसरे से मुलाकात ना करने के 100-100 बहाने हैं, तंज के तीर हैं, अपनी अपनी पीढ़ियों को उल्लू बनाने के लिए नकली इतिहास घड़ने वाली फैक्ट्रियाँ हैं। कोरियंस के पास क्या है? लकीर के आर पार पथराई आँखों वाली बूढ़ी माओं के सिवा। लिहाजा कहाँ कोरियंस, कहाँ हम, बात बनी नहीं न बनेगी।
वसतुल्ला खान की डायरी आपको कैसी लगी हमें लिखिएगा जरूर। और अब साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। कल आईपीएल में खेले गए पहले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने जयपुर में राजस्थान रॉयल्स को 11 रन से हराया। कल पहले तो हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का लुत्फ उठाते हुए कप्तान केन विलियमसन के 63 और एलेक्स हेल्स के 45 रन की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 151 रन बनाए और उसके बाद राजस्थान को निर्धारित 20 ओवर में केवल 6 विकेट खोकर 140 रन ही बनाने दिए। हालांकि कप्तान अजिंक्य रहाणे ने नाबाद 65 और संजू सैमसन ने 40 रन बनाए। कल ही खेले गए दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 6 विकेट से हराया। और अब समीक्षा। राष्ट्रमंडल खेलों में मिले 16 पदकों के बाद विश्व कप में मिला महज एक रजत पदक क्या भारतीय निशानेबाजों का फ्लॉप शो माना जाए?
एक भी नहीं, दो गोल्ड जीते हैं, वो भी मेरे फर्स्ट वर्ल्ड कप में, तो आई वॉज फीलिंग वेरी प्राउड।
ये आवाज है भारत की युवा निशानेबाज मनु भाकर की, जिन्होंने महज 16 साल की उम्र में इसी साल मेक्सिको में हुए विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में व्यक्तिगत और मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर रातों रात शोहरत पाई। और उसके बाद इसी महीने गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर उसी शोहरत में चार चांद लगाए। लेकिन उसके बाद कल ही कोरिया में समाप्त हुए ISSF विश्व कप में न सिर्फ मनु भाकर बल्कि हिना सिद्धू, जीतू राय, तेजस्विनी सावंत और संजीव राजपूत जैसे निशानेबाजों के निशाने पदक से दूर भटक गए। ये सब भी वो नाम हैं जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में अपनी अपनी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। हालात यहाँ तक पहुंचे कि भारत को केवल एक रजत पदक मिला जो शाहजार रिजवी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता और भारत पदक तालिका में 12वें स्थान पर रहा। चीन 4 स्वर्ण सहित 7 पदकों के साथ पहले, 3 स्वर्ण पदक सहित 5 पदकों के साथ रूस दूसरे और 2 स्वर्ण पदक सहित 3 पदकों के साथ अमरीका तीसरे पायदान पर रहा। राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान भारतीय निशानेबाजों पर अपनी पैनी नजर रखने वाली और साल 2003 में ISSF विश्व कप में चैंपियन ऑफ चैंपियंस रही अंजलि भागवत इतने धुरंधर निशानेबाजों के खाली हाथ लौटने से भी नाखुश नहीं है।
मुझे नहीं लगता ये फ्लॉप शो था, क्योंकि ये वर्ल्ड कप है जहाँ सारे दुनिया के शूटर्स यहाँ कम्पीट होते हैं। जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है वहाँ से ही शूटर्स आते हैं तो थोड़ा कंपटीशन कम रहता है, लेकिन वर्ल्ड कप में चाइना, कोरिया, यूएसए, जर्मनी जैसे देश से शूटर्स आते हैं। हम यहाँ पे मेडल के बारे में नहीं सोच सकते, इट इज अ वर्ल्ड कप।
माना कि विश्व कप में हर बार मेडल जीतना आसान नहीं, लेकिन अब तो भारत के सामने अगली चुनौती एशियाई खेल है, उसमें भी पदक जीतना कौन सा आसान होगा? इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले एशियाई खेलों में भारत ने केवल एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता था। हालांकि 7 कांस्य पदक मिलने से गिनती 9 हो गई। सबसे बड़ी बात, बदलते नियम और कम होती स्पर्धाओं ने पुराने निशानेबाजों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या अब जमाना युवाओं का है? अंजलि भागवत कहती हैं,
टू बी वेरी फ्रैंक कि आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये अभी जो शूटिंग इवेंट है ये यंग जनरेशन का इवेंट हुआ जा रहा है। जिस प्रकार से स्कोर बढ़ रहे हैं और रूल्स बनाए गए हैं, तो उतना शार्प फास्ट रिफ्लेक्सेस, इतना फोकस आप बहुत लिमिटेड समय तक रख पाते हो। और जो सीनियर शूटर्स हैं, हम लोगों को पुराने रूल की आदत पड़ चुकी है, लेकिन एक्सपीरियंस भी अब हिना सिद्धू ने कॉमनवेल्थ में स्पोर्ट्स पिस्टल में दिखाया कि नीचे होके भी फाइनल में वो फर्स्ट आ गई।
युवाओं का दमखम और पुराना अनुभव जब तक पदक तालिका में तालमेल दिखाते हुए पदकों की गिनती बढ़ाता रहेगा तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आने वाले समय की आहट को सुनकर शब्द भेदी निशाना लगाने का हुनर रखने वाले निशानेबाजों की कमी तो दूर करनी ही पड़ेगी, वरना रूस, चीन, अमेरिका, कोरिया और इटली तो चुनौती देते ही रहेंगे। उधर टेनिस के कोर्ट पर भारत के प्रजनेश गुणेश्वरन ने इनिंग में समाप्त हुए कुनमिंग ओपन टेनिस टूर्नामेंट में खिताबी जीत हासिल की। उन्होंने फाइनल में मिश्र के मोहम्मद शफवात को 5-7, 6-1, 6-3 से हराया। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
और विदा लेने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर नवीन नेगी से।
BBC समाचार। जम्मू कश्मीर सरकार में आज होने जा रहे फेरबदल से पहले राज्य के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह कविंद्र गुप्ता नए उप मुख्यमंत्री होंगे। ब्रिटेन की गृह सचिव एम्बर रूड ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले कई हफ्तों से ब्रिटेन की सरकार पर कैरेबियाई प्रवासियों के साथ दुर्व्यवहार की आलोचना हो रही थी। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा है कि अमेरिका अभी भी इस बात पर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है कि उत्तर कोरिया अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करने जा रहा है। आर्मेनिया के सत्ताधारी दल का कहना है कि वे प्रधानमंत्री चुनावों के लिए विपक्षी नेता निकोल पाशियान के सामने अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। निकोल पिछले 2 हफ्तों से आर्मेनिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन कर रहे हैं। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने, फेसबुक पर आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाया अभिमन्यु साहा ने। शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दें, नमस्कार।